نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. إيمان بالغيب، یہ ہے ہماری مین سیریز، یعنی اندیکھی دنیا پر یقین رکھنا، اندیکھی حقیقتیں جو آنکھ سے نظر نہیں آتی، اس کو ایسے دیکھنا کہ وہ ہمیں نگاہوں سے دکھ رہی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں وہ چیزیں جو لوگوں کو کل جا کر دکھیں گی تو وہ حیران رہ جائیں گے. خاص طور پہ کفار کی اللہ نے قرآن میں ایک صفت بیان کی ہے کہ وہ حیران ہو جائیں گے، ان کی آنکھیں چڑی کی چڑی رہ جائیں گی، ان کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ ہم کہاں ہیں، یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس کے برعکس مومن دنیا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ یقین رکھتے ہوئے ان باتوں کو پہلے سے مانتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلام کیا کہتا ہے. ہم اس سیریز میں ترتیب سے چل رہے ہیں. سبھی جانتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہہم قبل المشرق والمغرب ولکن، سورت بقرہ کی آیت 177، جس کو آیت بر بھی کہتے ہیں نا، اس میں نیکی کی مختلف اقسام ہیں. سب سے پہلے من آمن باللہ، اور دوسری چیز ہے وبالیوم الآخر. کیونکہ اللہ کو نہ مانے تو بھی بات بڑی مختلف ہو جائے گی، اور آخرت کو نہ ماننا، یہ دو چیزیں ہیں. اللہ کو اس کا حق نہ دینا اور آخرت کی حقیقت کو نہ ماننا، یہ ہیں وہ دو چیزیں جو آج بھی ہر دور کے لوگوں کی طرح لوگوں کو بے عملی پہ مائل کرتی ہیں. کر لو جو کرنا ہے، موج کرو، جب ہوگا دیکھی جائے گی. نہیں نہیں اللہ ایسا نہیں، اللہ ویسا نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا غلط کانسیپٹ لینا، یا تو اس کو بہت ہی رحمت والا سمجھ کے سب چھوڑ دو، جو ہوگا دیکھنا اس کی رحمت سے ہوگا، یا پھر اس کو یہ کہہ دینا اللہ نے کون سا معاف کرنا ہے تو پھر موج ادھر ہی کر لو. اللہ ہمیں دونوں حدوں سے بچاتے ہوئے اصل پہ لے کے چلے. اور آج ہم بات کریں گے انسان اور قیامت میں مسئلہ شفاعت پہ. شفاعت ہے نہیں ہے، کیا ہوگا، انسان اس بارے میں کیا سمجھے. اور یاد رکھیے کہ چونکہ ہم نے دیکھا نہیں ہے اور ابھی ہوا نہیں ہے، اور جو مر جاتا ہے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کسی نے آ کے بتایا نہیں، اس کے لیے پھر ہمیں 100% قرآن اور سنت پہ ہی اکتفا کرنا پڑے گا. کوئی بات ہے، اب امریکہ میں کچھ ہوا، کوئی چینل بتا رہا ہے، کوئی چھپا رہا ہے، کوئی کم بتا رہا ہے، کوئی اس میں ایگزیجریشن کر رہا ہے، پاسبلٹیز ہے نا. لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہو کہ جس کو بتانے والا صرف ایک ہو، ایک ہی سورس ہے، ایک میڈیم ہے، ایک چینل، تو پھر ہمیں اس کا ٹرسٹ کرنا پڑے گا نا. بس دنیا کی خبریں بتانے والے بہت سے چینلز، آخرت کی خبریں بتانے کا ایک ہی ذریعہ اللہ، یا اپنے رسول کے ذریعے کہلواتا ہے یا قرآن میں سے. اور قرآن بھی تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ملا نا. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ روز قیامت مختلف لوگوں کے ساتھ جو سلوک کیا جائے گا اس کو پڑھنے کے بعد. یعنی صرف پچھلا ٹاپک کیا تھا کہ ایمان والوں کے ساتھ کیا ہوگا روز محشر، بڑا خوبصورت ٹاپک تھا، سنیے گا. اب آپ میں نئے لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں اسی لیے میں دہرا دیتی ہوں، اور جو مستقل سن رہے ہیں ان کو تو یاد ہو جائے گا کہ آج کا ہمارا لیکچر نور القرآن ٹی وی، یوٹیوب یا پھر مائی نور القرآن فیس بک پہ اپنے اپنے اسکیجول پہ آ رہا ہے. آپ اس کو دیکھا کریں، لائیو کی بٹن کو دیکھیں گے نا تو اس میں پریمیم کیے ہوتے ہیں کس دن کس ٹائم پہ کون سا لیکچر آ رہا ہے. تو وہاں ایمان بالغیب کی سیریز کے اندر آپ کو یہ لیکچر دکھے گا. اس سے پچھلا لیکچر ابھی آج میں آپ سے یہ کر رہی ہوں، پچھلا لاہور میں ہوا ہے، اس سے پچھلے بہت جگہوں سے ہوئے. تو آپ کو گھر بیٹھے انشاءاللہ اپنے حساب سے ڈیلی بھی اگر ایک لیکچر سننے کی عادت پڑ گئی تو مجھے یقین ہے آپ اب سے لے کے رمضان تک اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کی کئی باریکیوں کو سمجھ جائیں گے. غیر مخصوص طریقے سے ہمارے اندر کمیاں ہوتی ہیں. جیسے کبھی آپ نے چاول بنائے ہیں تو پہلے دیکھ لیتے ہیں نا اس میں کوئی پتھر تو نہیں، دال کو بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ ساری دال ہی خراب ہے، کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے نا کنکر. بس آپ سب ماشاءاللہ دیندار ہیں، ہم جدی پشتی مسلمان ہیں، قرآن سے ہمارا شغف ہے، لیکن क्या हम गलती से पाक हैं? क्या हमारे अंदर 100% क्लैरिटी है? नहीं है, है तो चेक कर लीजिए। तो मैं सबको रغبत दूंगी कि डेली एक लेक्चर अपने स्केड्यूल से सुनिए, यूट्यूब से सुने और दूसरों से शेयर करते जाएं। तो ये एक इंशाल्लाह रमजान से पहले रिवाइवल ऑफ फेथ होगा हमारा। तो पिछले टॉपिक में हमने क्या देखा था कि लोगों के साथ क्या होने वाला है, उस दिन क्या होगा, बस ध्यान में लाइए। मैं जरा से विजुलाइज कराऊंगी, क्योंकि अपने माहौल में इधर उधर चीजों को देखकर अब सब चीजों को देखना छोड़ दें, अपने अंदर झांके, नोट्स लें और स्क्रीन से फायदा उठा लें। तसव्वुर में लाइए, क़यामत का दिन है, बड़ा हौलनाक दिन है, गर्मी भी है, सख्ती भी है और हिसाब ही नहीं शुरू हो रहा। लोग चाह रहे हैं कि हिसाब किताब शुरू हो और उस दिन की सख्ती से निजात मिले, लेकिन अल्लाह ताला के जाहो जलाल और उसकी हैबत के पेश नज़र किसी को जरूरत ही नहीं हो रही। ऐसे ही है ना, जैसे आपसे कोई बड़ा हो, कोई अफसर है, कोई मिनिस्टर है, तो आप तो नहीं उसको कह सकते ना कुछ। आप कहीं बिल जमा कराते हैं, विंडो ही नहीं खुल रही, तो इंतजार तो लंबा हो गया। एक दफा कोई शुरू हो जाए तो आप कहते हैं चलो चार रह गए, तीन रह गए, दो रह गए, अब मेरी बारी आ जाएगी। लेकिन क्यामत के दिन की सख्ती ऐसी सख्ती होगी कि एक तो अल्लाह का जलाल हैबत, दूसरी गर्मी, चीजें बदली हुई, जुरत नहीं। वला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहु अर्रहमान व क़ाला सवाबा। अल्लाह कहते हैं सूरह नबा है ना, पहली ही सूरत में, कि उस दिन तो कोई कलाम नहीं कर सकेगा सिवाय इसके जिसको अल्लाह ताला इजाजत दे, और जो करेगा भी उसी ने बात करेगा, कोई मजे वाली हंसी लगाकर, टॉन्टिंग स्टाइल या बेतकल्फी का अंदाज नहीं होगा। और इसके बाद लोग थक जाएंगे, थकते 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 बिल आखिर वो कहेंगे कि आइए जरा किसी को बीच में डालते हैं, वो अल्लाह ताला से जाके बात करे और हिसाब शुरू हो। इस तरह लोग मुख्तलिफ अंबिया और रसूल के पास आएंगे और फिर उनसे कहेंगे कि अल्लाह से सिफारिश कर दीजिए कि हिसाब किताब शुरू हो जाए, लेकिन सब उससे डर रहे होंगे, अल्लाह के हैबत और जलाल से। और याद रखिए कि रिवायात से पता चलता है कि अल्लाह उस दिन बड़े गुस्से में होगा। अल्लाह हम सबको अपने गुस्से से बचाए। लेकिन अभी हदीस आपको सुनाती हूँ, बिल आखिर नबी सल्लम के पास आएंगे, हिम्मत करेंगे और आप जाकर फिर अल्लाह के सामने सिफारिश करेंगे और फिर आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। और क्या होगा, लोग जन्नत में चले जाएंगे? नहीं, वो सिफारिश कौन सी होगी? हिसाब शुरू करने की। फिर हिसाब शुरू होगा और इसकी कॉन्सेप्शन भी इंशाल्लाह हम देखते हैं। पहले हदीस सुनिए, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से ये रिवायत है, बुखारी 4712 है, रेफरेंस भी लिख लें। आपने फरमाया, क्यामत के रोज में तमाम लोगों का सरदार होगा, जानते हो ऐसा क्यों कर होगा? अल्लाह ताला उस रोज अगले पिछले तमाम लोगों को एक ऐसे चटियल और हमवार मैदान में इकट्ठा करेंगे जहां पुकारने वाला इन्हें अपनी आवाज सुना सकेगा और देखने वाला इन सब को देख सकेगा। सूरज एक मील तक करीब आ जाएगा। तसव्वुर में लाइए, लोगों को इतनी परेशानी और गम होगा कि इनके लिए इसे बर्दाश्त करना मुमकिन न रहेगा। लोग आपस में कहेंगे, देखते नहीं किस मुश्किल और सख्ती ने तुम्हें घेर रखा है, लिहाजा कोई ऐसा शख्स तलाश करो जो तुम्हारे रब के हजूर तुम्हारी सिफारिश कर सके। चुनाचे वो आपस में एक दूसरे को कहेंगे कि तुम्हें अपने बाप आदम अलैहिस्सलाम के पास जाना चाहिए। चुनाचे लोग हजरत आदम के पास आएंगे और कहेंगे, आप अबुल बशर हैं। सोचिए, सबसे पहले नबी, अबुल बशर यानी तमाम इंसानों के बाप, अल्लाह ताला ने आपको अपने हाथ से बनाया, अपनी रूह आप में फूंकी है, फिर फरिश्तों को हुक्म दिया और उन्होंने आपको सजदा किया और आपको अल्लाह ने जन्नत में ठहराया। क्या आप अपने रब के हजूर हमारी सिफारिश नहीं करेंगे, जबकि आप देख रहे हैं कि हम किस कदर सख्त तकलीफ दे हालत में हैं और कितनी परेशानी का सामना कर रहे हैं? आप जरा उस बेबसी को महसूस करें। आप में से कौन कौन उम्रा कर चुका है? अल्लाह बार बार लेके जाए, रमजान का उम्रा करवाए, हज पे कौन कौन जा सके। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बाकियों को भी लेके जाए। अगर आपने ये हदीस समझनी है ना, तो अपना वो उम्रा या हज याद कीजिए जहाँ हर वक्त लाइनों में बंदा फंसा होता है। रश रश रश, इज्तिहाम। और कितने लोग होते हैं? मोस्टली 10 लाख, 15 लाख होंगे, 20 होंगे। चलिए रमजान में भी 20-25 लाख होंगे। आदम से लेके आखिरी इंसान तक सब जिस मैदान में आ जाएं, वहां क्या होगा? सिर्फ कदम रखने की जगह मिलेगी। यूं कदम कदम कदम, यानी बैठने की भी जगह नहीं होगी कयामत के दिन, इतना इज्तेहाम होगा। आप जब भी कभी उम्रे पे जाएं तो उसको याद कीजिएगा। और लोग कह रहे हैं साहब करें, अब आदम अलैहिस्सलाम क्या कहेंगे आगे से सुनिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे, आज मेरा रब इस कदर गुस्से में है कि ना इससे पहले कभी इतने गुस्से में आया और ना कभी इसके बाद आएगा। क्यों? आपके दिल में भी सवाल ना आए, लेकिन किसी के तो आएगा। क्यों? कोई बताएगा आप में से? आप देखिए, जो बहुत भी सब्र करता है ना, फिर एक दिन ऐसा आता है कि उसका सब्र दिखता है। अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां जो दौर गुजरा, आप सोचिए ना, शद्दाद ने क्या कुछ किया, फिरौन ने क्या कुछ किया, हामान की मस्तियां कोई देखे, नबी सल्लम के दुश्मनों ने नबी को कितनी तकलीफ दी, और आज वो सारे वहां खड़े। अल्लाह के निजाम को बिगाड़ने वाले भी खड़े हैं, बनाने वाले भी हैं। और अल्लाह वो सब देख रहा था कि जो कुछ लोग कर रहे थे इनके साथ, ईमान वालों को सताते थे, नबियों की जाने ली, तो गुस्सा तो बनता है। और अल्लाह को हक है, फरमाए अल्लाह को उस दिन बहुत गुस्सा होगा। मुझे अल्लाह ताला ने जन्नत में एक दरख्त के करीब जाने से मना फरमाया था, लेकिन मैं नाफरमानी कर बैठा। ये भी जुमला नोट कर, एक ओनली वन, मैं नाफरमानी कर बैठा, लिहाजा मुझे तो अपनी जान की फिक्र है। हाय मेरी जान, हाय मेरी जान, नफसी नफसी, कयामत के मैदान में। और कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ नबी बोलेंगे, और उनके मुंह पे दो लफ्ज आते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लिम, अल्लाहुम्मा सल्लिम, अल्लाहुम्मा सल्लिम, या फिर नफसी नफसी, मेरी जान मेरी जान। सोचिए अब, तुम मेरे अलावा किसी और के पास चले जाओ, फिर खुद ही कहेंगे हाँ नूह के पास चले जाओ। लोग हजरत नूह के पास जाएंगे और अर्ज करेंगे, नूह आप अहले जमीन की तरफ सबसे पहले रसूल थे, अल्लाह ने आपको शुक्र गुजार बंदा कहा है। क्या आता है कुरान में? बोलिए हजरत नूह को क्या? आबदन शकूरा, सूरत बनी इसराइल, इन्नहु काना आबदन शकूरा, कदरदान। अल्लाह मुझे भी बना दे, आपको भी। और आप देख रहे हैं कि हम किस कदर सख्त तकलीफ दे हालत में हैं और कितनी परेशानी का सामना कर रहे हैं। आप अपने रब के हजूर हमारी सिफारिश कर दीजिए। अब हजरत नूह का जवाब सुनिए। हजरत नूह कहेंगे, आज मेरा रब इतने शदीद गुस्से में है कि ना इससे पहले कभी इतने गुस्से में आया, ना इसके बाद कभी आएगा। और सुनो कि मुझसे दुनिया में ये गलती हुई थी कि मैंने अपनी कौम के लिए बददुआ की थी, इसलिए आज तो मुझे अब बस अपनी जान की फिक्र है। हाय मेरी जान, हाय मेरी जान, तुम लोग मेरे अलावा किसी और के पास जाओ, इब्राहिम के पास चले जाओ। खुद ही रेकमेंड कर रहे हैं, पहले नबी को क्या फिक्र है? एक दरख्त का फल चखा। दूसरे नबी को क्या फिक्र है? अपनी कौम के लिए बददुआ कर दी या बेटे के लिए कह दिया। तीसरा सुनिए, चुनाचे लोग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और कहेंगे, इब्राहिम आप अल्लाह के नबी और इसके खलील हैं, अपने रब के हजूर हमारी सिफारिश कर दीजिए, क्योंकि आपको मालूम है कि हम किस हाल में हैं। हजरत इब्राहिम कहेंगे, आज मेरा रब इस कदर गुस्से में है कि ना इससे पहले कभी इस कदर गुस्से में आया, ना इसके बाद आएगा। मैंने दुनिया में तीन झूठ बोले थे, जिसकी वजह से मुझे अपनी जान की फिक्र है। हाय मेरी जान नफसी नफसी। तुम लोग मेरे अलावा किसी और के पास जाओ और मूसा के पास चले जाओ, शायद वो तुम्हारी सिफारिश कर सके। क्या किया था जी? तीन झूठ। वो कौन से झूठ है जिसको तौरिया कह सकते हैं? अपनी कौम के बुत कदे में घुस के एक बड़े बुत के अलावा बाकी तोड़ दिए, और जब पूछा कि ये सब किसने किया तो क्या कहा था? बल फालहू कबीरुहुम हाजा, इनके बड़े ने किया। अंबिया आयत 63 नोट कर लीजिए। आपने ऐसा इसलिए कहा था ताकि लोग इस बड़े बुत से पूछें, और जब बुत जवाब नहीं देगा तो ये सोचने पे मजबूर होंगे क्या कि जो बुत बोल नहीं सकते वो किसी की मुश्किलें कैसे दूर कर सकते हैं? जिनके सामने सारे बुतों को भी तोड़ गया और कुछ ना कर सके तो वो इंसानों की मुश्किल कुशा कैसे हो गए? और दूसरा झूठ क्या था? वो जब कौम त्यौहार पे जा रही थी तो क्या कहा था? इन्नी सकीम, मैं तो बीमार हूँ। हालांकि आप बीमार नहीं थे, और आपने ऐसा कहा ताकि जब कौम बस्ती से बाहर जाएंगे तो तोड़ूंगा ना। तीसरा झूठ क्या था? हिजरत कर रहे थे मिस्र से तो आपकी बीवी के बारे में पूछा गया, ये कौन है? तो कहा ये मेरी बहन है, क्योंकि जो शाहे मिस्र था ना वो हर खूबसूरत औरत को छीन कर उस पर हाथ डालता था। आपने अपनी बीवी की इज्जत बचाने के लिए उसको बहन कह दिया। मुराद क्या था कि ये इस्लामी रिश्ता, क्योंकि कहते हैं कि उस वक्त जमीन पर ये दो ही मुसलमान थे, वल्लाहु आलम। तो अब ये तीन झूठ, हम कितने झूठ बोलते हैं? साथ साथ अपना मुहासबा कीजिए। आज हम झूठ तो ऐसे बोलते हैं जैसे वो सच है, झूठ को भी बना कर पेश करते हैं। कहने लगे आगे जाओ, और यहाँ से एक और नुक्ता नोट कीजिए। हर नबी दूसरे नबी के पास भेज रहा है, कोई दिल में ग्रह नहीं है ना, काबुल नहीं है ना। और ये भी नहीं है ना कि फिर लोग उसके पास चले जाएंगे, उसका नाम बड़ा हो जाएगा, मेरा नहीं होगा। आज जरा सा दीन का हमें चार लफ्ज समझ आते हैं ना तो हम सोचते हैं हम ही अकेले कुल हैं, कोई और कहीं जाए ही ना, वो सब बहक जाएंगे और हम ही ठीक हैं सबसे। तो ये बातें सीखने की होती हैं। खैर, मूसा ने क्या कहा सुनिए। लोग हजरत मूसा अलैहि सलाम के पास जाएंगे और अर्ज करेंगे, ऐ मूसा, आप अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह ताला ने आपको अपनी रिसालत की फजीलत अता फरमाई और आपसे हम कलाम होकर सारे लोगों पर आपको फजीलत बख्शी। आप अपने रब के हजूर हमारी सिफारिश कर दीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हम इस वक्त किस हाल में हैं। हजरत मूसा कहेंगे, आज तो मेरा रब इस कदर गुस्से में है कि ना इससे पहले कभी इतना गुस्सा उसे था और ना कभी आएगा। दुनिया में मैंने एक आदमी को कत्ल कर दिया था जिसे कत्ल करने का मुझे हुक्म ना था, लिहाजा इस वजह से मुझे अपनी जान की फिक्र है। नफसी नफसी, हाय मेरी जान, हाय मेरी जान। फिर हजरत मूसा कहेंगे कि तुम लोग मेरे अलावा किसी और के पास जाओ, हाँ देखो ईसा के पास चले जाओ। सेम जवाब। चुनाचे लोग ईसा अलैहि सलाम के पास आएंगे और अर्ज करेंगे, ऐ ईसा, आप अल्लाह के रसूल और इसका कलेमा यानी कलेमा कुन कहने से पैदा हुए, जो इसने मरियम की तरफ इल्का किया और अल्लाह की रूह है। आपने बचपन में माँ की गोद में लोगों से बातें की, आप आज हमारे लिए सिफारिश कर दीजिए, क्योंकि आपको मालूम है कि हम इस वक्त किस कदर सख्त तंगी की हालत में हैं। हजरत ईसा अलैहि सलाम जवाब देंगे, आज मेरा रब इस कदर गुस्से में है कि न इससे पहले कभी गुस्सा था और न इसके बाद आएगा। आप इस मौके पर हजरत ईसा के किसी गुनाह का जिक्र नहीं फरमाया, और रिवायतों से पता चलता है कि हजरत ईसा क्यों परेशान थे, कि मेरी कौम ने मुझे मेरे बाद खुदा बना लिया या अल्लाह का बेटा बना दिया। इस वजह से वो परेशान होंगे और कहेंगे, नफसी नफसी, हाय मेरी जान, हाय मेरी जान। फिर फरमाएंगे कि मेरे अलावा किसी दूसरे के पास जाओ, हाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले जाओ। चुनाचे लोग नबी सल्लम के पास अर्ज करेंगे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह के रसूल और खातमुल अंबिया हैं, अल्लाह ताला ने आपके अगले और पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए, अपने रब के हजूर हमारे लिए सिफारिश फरमा दीजिए, आप देख ही रहे हैं कि हमारी क्या हालत हो रही है। अब सुनिए, ये है सिफारिश। चुनाचे मैं जाऊंगा और अर्श के नीचे पहुंच कर अपने रब के हजूर सजदे में गिर पड़ूंगा। इस वक्त अल्लाह ताला अपनी हमदो सना के वो कलमे मेरे दिल में डाल देंगे जो इससे पहले अल्लाह ताला ने किसी को नहीं बताए। फिर अल्लाह ताला की तरफ से इरशाद होगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपना सर उठाएं और सवाल करें, आपको अता किया जाएगा। सिफारिश करेंगे तो आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। चुनाचे मैं कहूँगा, या रब मेरी उम्मत, या रब मेरी उम्मत, या रब मेरी उम्मत, तो कहा जाएगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत में से जिसके जिम्मे कोई हिसाब नहीं, इसे आप जन्नत के दरवाजों में से दाएं दरवाजे से जन्नत में दाखिल कर दें। तो ये देखिए, तवील हदीस है, बुखारी की रिवायत है, मुस्लिम की भी है, बहुत सारी बातें हैं इसमें। पहली बात है कि वहाँ नबियों का भी कोई जोर नहीं है। आज हमारे यहाँ अक्सर गलत फहमी से ही लोग नबियों को अल्लाह के साथ शरीक कर देते हैं। या अल्लाह लिखेंगे ना तो साथ या मोहब्बत भी लिख देंगे। और ये जो नमाजें हैं ना कि हरम की 50 नमाजें या 1 लाख नमाजें और मस्जिद नबी की 50, वहाँ भी यही कॉन्सेप्ट है। सही हदीसों से मस्जिद नबी की 1 नमाज कितनी? 1,000, कहीं 10,000 भी है, लेकिन 50,000 नहीं है। हमने कैसे ज्यूम किया, चलो अल्लाह का 100 तो बाकियों के 50 जरूर घुसेड़ना। तो ये हदीस आपको मुझे अकीदे के बाप में समझ आ रही है। तो यहाँ आप, मैं आपको एक छोटा सा पहले नोट देती हूँ, समझिएगा, ताकि आप सिफारिश के कॉन्सेप्ट को समझें। फिर हम आगे बात करेंगे कि अल्लाह ताला इंसानों की तरह किसी भी मोहब्बत या खौफ से मजबूर नहीं है। यानी ये कॉन्सेप्ट छेड़ने से पहले इस चीज़ को समझिए कि सिफारिश है क्या। मैं अक्सर, माशाल्लाह 20-22 साल हो गए, कराची में भी ये जुमले जुबान पे होते थे और बाहर भी, जहाँ भी ये टॉपिक पढ़ाए, 2-3 जुमले बोलती हूँ, उससे 90% बात आपको भी समझ आ जाएगी, जिसकी डिटेल फिर हम अपने बाकी वक्त में करेंगे। नंबर 1 लिखिए, सिफारिश सिफारिश है, हुक्म नहीं। अदालत को जहन में ले आइए, कोई सिफारिश कर दे लेकिन जरूरी तो नहीं ना कि जज माने, ये जुमला लिख लें हम। दूसरी बात लिखिए, पहला जुमला समझ आ गया, क्लियर है, कोई करता है तो कर दे, हुक्म तो नहीं है कि अल्लाह जरूर माने, क्योंकि अल्लाह ताला इंसानों की तरह ना तो किसी का पाबंद है, ना किसी की मोहब्बत उसको मजबूर कर सकती है, ना किसी का खौफ उसको मजबूर कर सकता है। हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को अकेले पैदा किया और आज इसका निजाम भी वो तन तनहा चला रहा है। अगला जुमला लिखिए, जिस तरह इस कायनात को पैदा करते वक्त इसे किसी की मदद की जरूरत ना थी, इसी तरह कायनात का निजाम चलाने में भी वो किसी का मोहताज नहीं। गोया कि अपनी ज़ात में जहाँ वो खालिक कुल खल्क है और मालिक उल मुल्क है, वहाँ वो कादरे मुतलक भी है, मुख्तारे कुल भी है, मगर इंसानों का मामला ऐसा नहीं होता। चले मिसाल देती हूँ, दुनिया में एक छोटा सा हाकिम या बादशाह, इंसान होने के नाते बहुत सी ख्वाहिशात तो क्या तो बेबस हो जाता है। मसलन आप देखते हैं कि एक हाकिम वक्त अपनी रियासत के किसी बागी या मुजरिम को सजा देना चाहता था, मगर उसके बीवी बच्चे या वजीर मशीर कोई करीबी दोस्त आड़े आ गया, नहीं 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 छोड़ दो उसको, ये फलां है, यानी उस मुजरिम की सिफारिश आ गई, तो लिहाजा उसकी जान बख्शी की जो सिफारिश हुई, हाकिम वक्त मजबूर हो जाता है, अपना फैसला बदल देता है। दूसरी चीज हम देखते हैं कि खौफ को थ्रेट दे देता है, खास तौर पे कत्ल के मुकदमों में होता है, जज की अपनी जान को खतरा होता है, कहते हैं खबरदार अगर हमारे खिलाफ दिया हम आपको भी खत्म कर देंगे। तो दूसरी वजह क्या होती है, खौफ, कि खौफ की वजह से बदलना पड़ता है, वरना उनसे जो बड़े हैं वो उनसे नाराज भी होंगे और उनकी पोस्ट भी हो सकता है बदल दें, उनसे डिग्री वापस ले लें। तीसरी चीज होती है मुफाद, लालच, कोई लालच सामने आ जाता है फैसला बदल जाता है, यानी रिश्वत ले ली, मुकदमा फैसला उनके हक में कर दिया। तो 3 चीजें, मोहब्बत, खौफ और लालच, इनसे मजबूर होकर फैसले बदलना इंसानों के लिए तो मुमकिन है, बल्कि बास हालात में तो जरूरी हो जाता है, लेकिन अल्लाह ताला की जात बाबरकत इन मजबूरियों और कमजोरियों से पाक है, बुलंदो बाला है। अल्लाह ताला ना तो किसी की मोहब्बत के हाथों मजबूर है, ना किसी का खौफ और लालच इसकी राह में रुकावट है, इसलिए कि इसका फैसला कतई है, अटल है और अदल पे मबनी है। वो अपने बागियों और मुजरिमों में से जिसे चाहे खुद ही माफ कर दे, और अपने नेक बंदों में से जिसके लिए चाहे उसकी नेकी से ज्यादा उस पर इनाम और कराम की बारिश कर दे। ना उसे कोई रोकने वाला ना टोकने वाला, क्योंकि बाकी सब मखलूक इसकी है और वो तनख्वाह सबका खालिक है। फिर मखलूक को क्या मिजाल कि वो खालिक के काम में मुदाखलत करे। अब दुनिया के एक छोटे से इंस्टीट्यूट को देख लें, बैंक, बॉस, सुपरिटेंडेंट, मैनेजर, डायरेक्टर, ये लफ्ज़ सुनते ही एकदम इख्तियार सामने आता ना, और बाहर बैठा बेचारा गेटमैन, उसकी क्या जरूरत है कि वो अपने बॉस के किसी फैसले पे तनकीद करे, या बॉस को उसकी बात मान लेगा अगर वो कह दे। उसका दिल चाहे तो मान ले, दिल चाहे तो ना मान ले। तो इतनी बात समझ आ गई, मेन कोड वर्ड क्या दिया था, सिफारिश, सिफारिश है, हुक्म नहीं है। और तीन चीजों के अंडर हमने देखी कि अल्लाह ना किसी के खौफ से पीछे होता है, ना लालच है उसको, और ना कोई और मोटिव है। अगली बात समझिए, हम अक्सर सवाल करते हैं ना, सिफारिश क्यों हो, तो सिफारिश की जरूरत और मकसद क्या है, ना हो ना भी होती तो भी क्या था, और अल्लाह सुबहाना ताला तो सारी चीजों को जानते हैं। हदीस में आता है कि अल्लाह ताला की रहमत उसके गजब पे हावी है। कुरान की आयत को याद आ रही है, बोल दीजिए। कतब अला नफ्सिर रहमा, सूरत अनाम, सूरतुल अनाम, कतब अला नफ्सिर रहमा, उसने अपने नफ्स पर रहमत लिख दी। इसी तरह हदीस कुदसी भी है, और भी हदीसें हैं, लेकिन मफहूम सबका क्या है, अल्लाह ने कहा कि मेरी रहमत मेरे गजब पर छा गई। जब अल्लाह सुबहाना ताला की रहमत उसके गजब पे छा जाती है, तो दुनिया में क्या होता है, मुख्तलिफ सूरतों में अल्लाह ताला इसका इजहार करते हैं, इसी तरह आखिरत में भी इजहार करेंगे। तो अल्लाह कैसे अपनी रहमत के साथ मामला करेंगे, पहला उसका मरहला तो क्या है, बहुत से लोगों को बगैर हिसाब के जन्नत मिल जाएगी, अल्लाह आपको और मुझे उनमें करे, दुआ किया करें, अल्लाह मुझे उन 70,000 में कर लें जो बगैर हिसाब के जाएंगे। दूसरा एक मरहला होगा, कुछ लोगों को उनके गुनाह याद करवाए जाएंगे। अब वो इकरार कर लेंगे, इनकार कर नहीं सकते, वीडियो बनी सामने हो तो कौन इनकार करे, लेकिन अल्लाह उनकी पर्दापोशी कर देगा। और हदीस से पता चलता है किसी एक को तो अल्लाह यूं ले लेगा अपने हाथ में, जैसे हम बगल गिर होते हैं ना, और फिर अल्लाह उस पर अपनी रहमत की चादर डाल देगा। अल्लाह मेरे साथ भी ऐसा करे, आपके साथ भी ऐसा करे। इसी तरह एक तीसरी सूरत क्या होगी कि थोड़ी सी सजा के बाद किसी को जन्नत में भेज दिया जाए, यानी जहन्नम की बस एक हल्की सी झलक और फिर जन्नत। इसी तरह एक सूरत क्या होगी कि अमल का बदला और इनाम कई गुना ज्यादा दे दिया जाए। जैसे कभी आप भी करते होंगे ना, आपने 5,000 देने थे मेड को, मासी को, बर्तन धोने के, आप देख रहे हैं इतनी मेहनत से काम करती है और थक जाती है, और किसी दिन आप उससे बड़े ही खुश हैं, तो आप उसको कहते हैं 5 की जगह 6 दे देते हैं, क्या फर्क पड़ता है मासी, ये दूध पी लेना, अच्छा इससे कुछ फ्रूट लेके खा लेना, ये 5 तो आपका फर्ज था ना उसको देना, लेकिन ये जो 1 है ना, ये रहम है। अल्लाह कयामत के दिन कुछ लोगों के साथ ऐसा मामला करेंगे, बाज लोगों के लिए अल्लाह ताला अपने करम और नवाजिश का इजहार बराहे रास्त खुद ही कर देंगे। अब इमेजिन कीजिए ना, जो मैंने अभी मिसाल दी, अब खुद ही दे देते हैं, लोमा, ये भी रख लो, ये भी ऊपर के भी रख, जिसको कहते ऊपर के पैसे। लेकिन कभी आप किसी दूसरे के जरिए भी उसको दिलवाते हैं। अल्लाह ताला बास लोगों के लिए करना लाने हैं, लेकिन दूसरों के जरिए करवाएंगे, इसको सिफारिश कहते हैं।